नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष उनियाल। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से जुड़े 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए। सीरियस जनरल अनिल चौहान ने चमोली जिले के बद्रीनाथ में सूर्य देवभूमि चैलेंज का शुभारंभ किया। चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण आज से शुरू होंगे और केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए गेहूं खरीद के लक्ष्य को बढ़ाकर 5 लाख क्विंटल किया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से जुड़े 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए। इनमें संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण को लागू करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान संशोधन और परिसीमन विधेयक पेश करते हुए लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है। इनमें 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी को भी अहंकार पूर्ण भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वे भारत की महिलाओं को कुछ दे रहे हैं, बल्कि यह उनका अधिकार है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से इस ऐतिहासिक विधेयक को राजनीतिक रंग न देने की अपील की।
आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि ये किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा, ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे।
श्री मोदी ने कहा कि एक विकसित भारत केवल बुनियादी ढांचे, रेलवे या आर्थिक संकेतकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें महिलाओं की समान भागीदारी भी आवश्यक है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने चमोली जिले के बद्रीनाथ से सूर्य देवभूमि चैलेंज का शुभारंभ किया। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत यह आयोजन सीमावर्ती गांवों में रोजगार और पर्यटन को प्रोत्साहित करेगा। इसमें कुल 300 प्रतिभागी भाग लेंगे। वहीं उत्तरकाशी के हरसिल में सीडीएस चौहान ने सांस्कृतिक विरासत केंद्र की आधारशिला भी रखी। श्री चौहान ने वाइब्रेंट विलेजेस योजना के अंतर्गत स्थानीय ग्रामीणों से संवाद कर सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में उनकी भूमिका की सराहना की। जनरल चौहान ने बगोरी और मुखवा गांव का भी भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी जीवन शैली एवं सांस्कृतिक विरासत की सराहना की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। राज्य सरकार यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। इसी के तहत हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में आज से चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। यहां श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 20 रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कर्मचारियों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि आज से ऋषिकुल मैदान में पंजीकरण की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की।
देखिए, आप जानते हैं कि 19 तारीख से कपाट खोल रहे हैं, तो 17 तारीख से जनपद हरिद्वार में यहाँ ऋषिकुल ग्राउंड में रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी जाएगी। उसी क्रम में एक स्पेशल यहाँ पे फैसिलिटी डेवलप की गई है, जिसमें 20 काउंटर्स दिए गए हैं और उन काउंटर्स में स्टाफ की तैनाती भी कर दी गई है। सभी जगह जो सुविधाएं देनी थी उसका काम चल रहा है। जो श्रद्धालु आएंगे उन सभी के लिए सफिशियंट पीने का पानी की व्यवस्था हो, रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाए उनका, टॉयलेट्स की व्यवस्था हो और साथ ही यहाँ से आगे जाना है उनको चारधाम के लिए, तो उसके लिए गाइड करने के लिए यहाँ पर टीम मौजूद रहेगी। होटल धर्मशालाओं में भी अगर बड़े ग्रुप आते हैं तो उनके लिए मोबाइल टीम का भी व्यवस्था की गई रजिस्ट्रेशन के लिए। कुछ कुल मिला के प्रयास ये रहेगा कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो आराम से चले, लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े।
वहीं ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में 30 काउंटरों पर श्रद्धालुओं का ऑफलाइन पंजीकरण किया जाएगा। इसके लिए कैंप क्षेत्र में 24 पंजीकरण काउंटर बनाए गए हैं, जबकि 6 अतिरिक्त काउंटर ISBT के समीप स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा गुरुद्वारा सिंह साहिब के कपाट खुलने के बाद वहां भी 4 काउंटर संचालित किए जाएंगे।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
आयुक्त सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति आनंद स्वरूप ने कहा कि केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद के लक्ष्य में वृद्धि करते हुए राज्य के लिए 5 लाख कुंतल कर दिया है। श्री स्वरूप ने कहा कि पूर्व में केंद्र सरकार ने राज्य के लिए गेहूं खरीद का लक्ष्य 10,000 कुंतल निर्धारित किया था, जिससे किसानों में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। उन्होंने कहा कि केंद्र के फैसले से किसानों की आय में वृद्धि के साथ ही कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष गेहूं खरीद व्यवस्था को अधिक प्रभावी पारदर्शी बनाने के लिए गढ़वाल संभाग में 45 एवं कुमाऊं संभाग में 123 सहित कुल 168 राजकीय क्रय केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। श्री आनंद स्वरूप ने बताया कि वर्तमान तक स्मार्ट पीडीएस पोर्टल पर 1,597 कृषकों द्वारा पंजीकरण कराया जा चुका है और 5,852 कुंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है। प्रदेश सरकार ने 19 अप्रैल से शुरू हो रहे 4 धामों के दर्शन के लिए आने वाले तीर्थ यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए यात्रा मार्गों पर 25 विशेषज्ञ डॉक्टर, 178 मेडिकल अधिकारी और 414 पैरामेडिकल स्टाफ तैनात की हैं। शासन ने रुद्रप्रयाग, चमोली व उत्तरकाशी जिले में 47 स्थायी स्वास्थ्य केंद्रों के साथ 25 मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाए हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 112 108 और 104 हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। साथ ही यात्रियों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए 13 भाषाओं में गाइडलाइन भी जारी की गई है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने चारधाम यात्रा तैयारियों की समीक्षा बैठक में साइबर अपराध, फर्जी हेली टिकट बुकिंग, ओवर रेटिंग, होटल बुकिंग की धोखाधड़ी रोकने के सख्त निर्देश दिए। लोक भवन में चारधाम यात्रा की तैयारियों की बैठक लेते हुए उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक उत्तरदायित्व है। इसे पूर्ण समर्पण और संवेदनशीलता के साथ संपादित किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने आवश्यक सेवाओं की कीमतों में अनुचित वृद्धि करने वालों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तराखंड व चार धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों की राह सुगम होगी, साथ ही विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से वर्तमान में राज्य में करीब 1,30,000 करोड़ से अधिक की लागत से बन रहे कई विकास योजनाओं का कार्य गतिमान है। उन्होंने कहा कि देहरादून को अगले महीने तक पांवटा साहिब देहरादून 4-लेन मार्ग की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद जून में सहारनपुर बाईपास से हरिद्वार तक 6 लेन वाला 51 किलोमीटर हाईवे भी यातायात के लिए उपलब्ध हो जाएगा, जबकि इसी वर्ष अक्टूबर तक हरिद्वार बाईपास के प्रथम चरण का कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उत्तराखंड में आने वाले लोगों के लिए, उत्तराखंड से देहरादून से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए बहुत सुविधा का काम हो गया। 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून का सफर पूरा हो जाएगा, उसके साथ साथ फुटफॉल भी बढ़ेगा। तो उसके लिए हम अनेक विकल्पों पर पहले से ही बात कर रहे हैं, जैसे हमारा रिंग रोड हमने प्रस्तावित किया हुआ है, कुछ बाईपास बना रहे हैं, कुछ अन्य मार्ग खोज रहे हैं जिससे कि जो है जो जाम की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, आवास की समस्या है, अन्य व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं भी हमारी बनी रहे, लोगों को परेशानी न हो।
और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को सदन में पेश होने की खबर को आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इस खबर पर प्रधानमंत्री के हवाले से अमर उजाला लिखता है, परिसीमन में किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होगा, महिला आरक्षण को राजनीति के तराजू में मत तौलिए, यह राष्ट्रहित का निर्णय। हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, लोकसभा में प्रधानमंत्री ने सर्वसम्मति से विधेयक पारित कराने की अपील की, कहा विरोध करने वाले की मत चुकाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से जुड़े 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने चमोली जिले के बद्रीनाथ में सूर्य देवभूमि चैलेंज का शुभारंभ किया। चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण आज से शुरू होंगे और केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए गेहूं खरीद के लक्ष्य को बढ़ाकर 5 लाख कुंतल किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।